आज है 25 अगस्त दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत प्रशासित कश्मीर में पैलेट गन का ढूंढा जाएगा विकल्प। तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा,
95% वो पॉपुलेशन बिलखसूस वादी की जो जम्मू कश्मीर के जो भी इशू है उसका हल पीसफुल मीन से चाहते हैं। जो लोग यहाँ तबाही मचाते हैं 5% उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 20 जिले प्रभावित। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राहत शिविरों का दौरा। इटली में आए भूकंप में 241 लोगों की मौत। दिल्ली में साल 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार के दोषी ने की आत्महत्या की कोशिश। होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राज्य के 95% लोग बातचीत के जरिए शांति बहाली चाहते हैं। सिर्फ 5% लोग पूरी प्रक्रिया में रुकावट डाल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा ने कहा कि सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कश्मीर घाटी में बीती 8 जुलाई से तनाव बना हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर बनाई गई कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद इस मुद्दे पर फैसला होगा। इटली में कल आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 240 के पार पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अब भी कई लोग मलबे में फंसे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से ज़्यादा राहत और बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। इनमें से कुछ कर्मचारी भारी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ हाथ के सहारे मलबा हटा रहे हैं। इटली के पेस्कारा डेल ट्रोंटो में भूकंप के 16 घंटे बाद एक 10 साल की बच्ची को जिंदा बाहर निकाला गया। एमाट्रीचे में भूकंप के बाद के झटके महसूस किए गए, इससे राहत का काम प्रभावित हुआ। बेघर लोगों के लिए यहां टेंट लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस सीरिया के एलेपो शहर में 48 घंटे के संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है, जिससे वहां मानवीय सहायता भेजी जा सके। संयुक्त राष्ट्र के दो प्रमुख अधिकारियों स्टेफान दे मिस्तूरा और यान एगेलान ने कहा है कि दूसरे पक्षों से भी संघर्ष विराम की गारंटी की ज़रूरत होगी। मानवीय सहायता सरकार और विद्रोहियों दोनों के अधिकार वाले इलाकों में बांटी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी यान एगेलान ने जिनेवा में कहा, हम 48 घंटे के संघर्ष विराम के दौरान 20 ट्रकों के 2 काफिलों को पूर्वी एलेपो तक पहुंचाने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें 80,000 लोगों के लिए खाने का पर्याप्त सामान होगा। दूसरी बात यह है कि इसी दौरान पश्चिमी एलेपो में भी जरूरत के सामान की मांग बढ़ गई है। ये थे यान एगेलान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के रक्षा मंत्री फकीरी एशक ने सीरिया के कुर्द लड़ाकों से एक हफ्ते के अंदर फरात नदी के पूर्वी हिस्से तक पीछे हटने को कहा है। रिपोर्ट है कि तुर्की के टैंक सीरिया के उत्तरी हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की ने बुधवार से अमेरिका की मदद से अभियान की शुरुआत की है। तुर्की के मुताबिक अमेरिका ने जानकारी दी है कि हाल में मनबिज में इस्लामिक स्टेट पर जीत दर्ज करने वाले कुर्द लड़ाके पीछे हटने लगे हैं। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी ने ऐलान किया है कि इराक की सेना ने मोसूल के दक्षिण स्थित कायरा से इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को बाहर कर दिया है। आबदी के मुताबिक कायरा की जीत बेहद अहम है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत प्रशासित कश्मीर के अपने 2 दिन के दौरे को समेटते हुए आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ ही दिनों के भीतर पैलेट गन का विकल्प ढूंढा जाएगा और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को घाटी में बातचीत के लिए भेजा जाएगा। इधर राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 50 दिन से जारी आंदोलन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केवल 5% लोग अस्थिरता फैला रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
दौरे के अंत पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीरी लोगों से कहा कि वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शांति प्रयासों का साथ दें।
केवल कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले सारे लोगों को तकलीफ होती है। क्या हम ऐसे हालात से इस कश्मीर को बाहर नहीं निकाल सकते? मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, कश्मीर के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें।
मिस्टर सिंह ने पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों में 14,000 कश्मीरियों की भर्ती की घोषणा की और कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों में नौकरी या शिक्षा प्राप्त करने गए कश्मीरियों की समस्याओं के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा जो फोन पर उपलब्ध रहेगा।
आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आज के 2-3 दिन पहले मैंने लखनऊ से हिंदुस्तान के सारे नौजवानों से भी अपील की कि हमारा कश्मीर का कोई नौजवान हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, उसकी हिफाजत करना, उसका मान सम्मान करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये हर हिंदुस्तान के नौजवान की जिम्मेदारी है।
इस मौके पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने उन सभी प्रश्नों को टाल दिया में पूछा गया कि क्या कश्मीर की समस्या का कोई राजनीतिक समाधान ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आंदोलन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए दावा किया कि केवल 5% जनसंख्या विरोध प्रदर्शनों का साथ देती है और बाकी 95% शांति चाहते हैं।
95% वो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की, बिलखुसूस वादी की, जो जम्मू कश्मीर के जो भी इशू है उसका हल पीसफुल मीन से चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं। जो लोग यहाँ तबाही मचाते हैं 5%, उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के तहत उनको डील किया जाएगा, उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए स्थायी राजनीतिक हल की बात की थी। अलगाववादियों ने पहले ही भारतीय संविधान के भीतर किसी भी हल को रद्द करके फिर से एक सप्ताह के बंद का आह्वान किया है। अपोजिशन के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि हमेशा के लिए कश्मीर की समस्या को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत आवश्यक है।
अगर एक वक्त के लिए हम जम्मू कश्मीर का इशू सेटल करना चाहते हैं तो कभी न कभी हमें पाकिस्तान से भी बातचीत करनी होगी। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, सब इश्यूज पे बातचीत हो और जम्मू कश्मीर का भी जो इशू वहां पे उठाया जाए। लास्टिंग सॉल्यूशन एक मुलाकात से हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ना एक बार ये होम मिनिस्टर साहब के यहाँ आने से। लगातार बातचीत का सिलसिला चले तो उसके बाद हम कुछ हासिल करेंगे।
गौरतलब है 8 जुलाई को पुलिस के खुफिया ऑपरेशन में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की 2 साथियों समेत मृत्यु के साथ ही घाटी में अलगाववादी आंदोलन छिड़ा था। 50 दिन से लगातार कर्फ्यू, बंद और संपर्क के साधनों पर प्रतिबंधों के कारण आम जनजीवन ठप है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध फोर्सेज कार्रवाई में अब तक 65 से अधिक लोग मारे गए हैं और 6,000 से अधिक घायल हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बताया कि 4,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। कश्मीर में स्थिति पर काबू पाने के लिए CRPF के साथ साथ अब BSF की 26 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में संकट गहराता ही जा रहा है। बाढ़ से राज्य के 20 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। हालांकि आज कुछ इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं दर्ज की गई, लेकिन यहां फंसे लोगों को दिक्कतें उनकी बढ़ती ही जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और गोंडा के बाद आज वे इलाहाबाद पहुंचे हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले उनसे बात की।
मैं हूँ इलाहाबाद में। ये सलोरी गोविंदपुर का इलाका है और ये बहुत खराब स्थिति है। जो बाढ़ से सबसे ज्यादा इलाहाबाद प्रभावित इलाके हैं, शहरी इलाके, उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका ये है। और यहाँ पे रिहायशी इलाकों में काफी अंदर तक पानी घुस गया है। अभी हमने खुद भी नाव में बैठ करके इस पार से उस पार गए, यानी इस रिहायशी इलाके से दूसरे रिहायशी इलाके में गए। और बहुत सारे लोग, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जिनके पास कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि केवल इस मोहल्ले में कम से कम 500-600 घर ऐसे होंगे जो कि डूबे हुए होंगे। तो और जाहिर सी बात है कि जो आम दिनचर्या है लोगों की वो प्रभावित है। नाव के जरिए ही लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल तो बंद किए हुए हैं, लेकिन लोग कोचिंग वगैरह में पढ़ने, हमारी कई विद्यार्थियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि वो लोग कोचिंग करने के लिए सलोरी से आते हैं और गोविंदपुर में नाव से पार होकर के आते हैं और फिर नाव से पार होकर के वापस जाते हैं।
समीर, ये बताइए कि राहत कार्यों की क्या स्थिति है वहाँ पर?
राहत कार्यों की, जैसा कि प्रशासन का कहना है कि जब से 8 दिन से 7 दिन हो गए जब ये बाढ़ जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ है, तब से राहत सामग्री हर जगह पे बंटवाई जा रही है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, जो ये राहत पैकेट होते हैं वो बंटवाए जा रहे हैं। नावें लगाई गई हैं, नावें खैर दिखाई भी पड़ रही हैं, हालांकि जिस तरह से जितनी जनसंख्या प्रभावित है उसकी तुलना में नावें तो बहुत कम है। यहाँ पे हजारों लोग प्रभावित हैं और मुझे 2-3 नाव से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ी जो सलोरी और गोविंदपुर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लोगों का जो कहना है, स्थानीय लोगों में कोई ऐसा नहीं मिला जो कि प्रशासन के राहत कार्यों से संतुष्ट दिखाई पड़ा हो। लोगों का कहना है कि वो खुद, वो लोग, कई युवा हमें मिले जिनका ये कहना था कि उन लोगों ने अपनी खुद की एक टीम तैयार की और जो उनसे हो सकता था लोगों में खाना बंटवाना और जो भी चीजें बंटवाना वो सब कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की राहत कार्यों से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़े।
इलाहाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवाजाही के लिए लोग कर रहे हैं नाव का इस्तेमाल। ये थे इलाहाबाद से समीर आत्मज मिश्र। इधर बिहार में बाढ़ की वजह से 27 लोगों की मौत हो चुकी है और बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना में बने राहत शिविरों का दौरा किया। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले स्थानीय पत्रकार नीरज सहाय से बात की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह ही एक एक्टिविस्ट की भूमिका में नजर आए। उन्होंने पटना के लगभग 3 बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया। उसमें पटना के बिहार विद्यापीठ, दानापुर के बलदेवा हाई स्कूल और बख्तियारपुर में दौरा किया। यहाँ बिहार विद्यापीठ में दौरे के दौरान वे बाढ़ पीड़ितों से मिले, उनसे खाने और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में पूछा और उसके बाद उन लोगों के बीच में कुछ राहत सामग्री भी बांटी गई, लेकिन बाढ़ पीड़ित शिकायत करते ही नजर आए।
जी, बाढ़ पीड़ित शिकायत करते ही नजर आए। उधर अगर बात की जाए जिन इलाकों में गंगा जो है खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, बक्सर, पटना, मुंगेर, वहां पर किस तरह का राहत कार्य चल रहा है, किस तरह से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर?
वहां के बारे में मेरी बात हुई है DIG NDRF के DIG SS गुलेरिया से। उनके हिसाब से जो इनपुट्स उनके पास आ रहे हैं उस हिसाब से पूरे बिहार में बक्सर से लेकर कटिहार तक 21 टीम उन लोगों ने डिप्लॉय किया है। हालांकि वो बता रहे हैं कि सभी जगह जहां से भी सूचना आ रही है वो लोग वहां पर राहत टीम तुरंत भेज रहे हैं और उनके अनुसार लगभग कुल 7 एडवांस प्रेग्नेंट लेडीज को भी उन लोगों ने सफलतापूर्वक हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। एक लेडी का NDRF के बोट में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ये आज खबर में भी आई। हालांकि वो दावा कर रहे हैं, लेकिन कल परसों मेरी बात हो रही थी आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी से, तो उन्होंने ये आशंका जताई थी कि डाउन स्ट्रीम में अब वाटर लेवल कुछ और बढ़ सकता है, क्योंकि पटना में अभी भी गंगा जो है डेंजर लेवल के ऊपर है लेकिन जलस्तर में कमी आ रही है और ये जो बहाव होगा वो डाउन स्ट्रीम मतलब बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर इस तरफ से कुछ ऊपर हो सकता है। तो उधर के बारे में तो ज्यादा कुछ ये नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो उधर भी कुछ गड़बड़ी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राहत शिविरों का दौरा। ये थे नीरज सहाय।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। इटली में कल आए भीषण भूकंप के बाद करीब 4,000 राहतकर्मी मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए मशीनों और अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस भूकंप में अब तक 241 लोग मारे जा चुके हैं और कईयों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भूकंप का केंद्र रोम से 170 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बसा नोरचा शहर था। पूरे ब्यौरे के साथ वैभव श्रीवास्तव।
ये आवाज उस वक्त की है जब इटली के पिस्कारा डेल ट्रोंटो गांव में एक 8 साल की लड़की भूकंप के 17 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाली गई। खबरों के अनुसार इटली के पर्वतीय इलाके में आए भूकंप में 240 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अब तक कई लोग लापता हैं। हजारों लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि अमेट्रीची, अक्यूमोली और पिस्कारा डेल ट्रोंटो के पर्वतीय इलाकों में अब भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। अमेट्रीची शहर के अग्निशमन दल के प्रवक्ता ल्यूका कैरी ने कहा कि सभी लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि जिंदा बचे लोगों को जल्द से जल्द मलबे से निकाला जाए।
पूरी रात काम चला, कोई भी टीम एक बार भी नहीं रुकी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पुलिस दल के कुत्तों की बेहद अहम भूमिका है। सारी कोशिशें इसलिए चल रही हैं ताकि जिंदा बचे लोगों को ढूंढा जा सके।
अमेट्रीची शहर के अग्निशमन दल के प्रवक्ता ल्यूका कैरी के शब्द। भूकंप के बाद से लगातार बचाव कार्य जारी है और इलाके में भारी वाहन और मशीनों के ना पहुंच पाने की वजह से बचाव कर्मी अपने हाथों से ही मलबा हटाकर मृतकों के शरीर और दबे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। वहीं इटली में रेड क्रॉस संस्था के महासचिव फ्लाविओ रोंजी ने बीबीसी को बताया कि भूकंप के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों को जिंदा निकालने की उम्मीद बाकी है।
हम अब भी बचे हुए लोगों को ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि अब भी कुछ वक्त बाकी है। हम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर यह बात सही है कि हर घंटे के साथ लोगों को बचाने की उम्मीद कम हो रही है।
इटली में रेड क्रॉस संस्था के महासचिव फ्लाविओ रोंजी के शब्द। नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख ने इस भूकंप की तुलना वर्ष 2009 में एक्विला क्षेत्र के भूकंप से की, जिसमें 309 लोग मारे गए थे। विभाग की प्रमुख इमाकुलाटा पोस्टिलियोनी ने मीडिया को बताया कि हजारों की तादाद में सैनिक, सुरक्षाकर्मी और सहायता के लिए आए आम नागरिक बचाव कार्य में लगे हुए हैं।
Allora, nello specifico sono circa 1000 gli uomini e le donne.
विस्तार से बात करें तो हमारे पुलिस बल के लगभग 1000 आदमी और औरत बचाव कार्य में लगे हुए हैं और 1000 से ज्यादा अग्निशमन दल के लोग भी हैं। सैन्य बल से 400 से ज्यादा सैनिक आए हैं और अलग अलग राष्ट्रीय संस्थाओं से भी। साथ ही तीनों प्रभावित इलाकों की स्थानीय संस्थाओं से भी मदद के लिए लोग आगे आए हैं।
नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख इमाकुलाटा पोस्टिलियोनी के शब्द। वहीं इटली के प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने कहा है कि भूकंप प्रभावित हर व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। विभिन्न एजेंसियों की मदद से भूकंप से प्रभावित तीनों इलाकों में राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है।
इटली में भूकंप के बाद राहत अभियान जारी, ये थे वैभव श्रीवास्तव।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
किराए की कोख यानी सरोगेसी पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल सुषमा स्वराज ने प्रेस वार्ता में सरोगेसी पर कैबिनेट द्वारा पास किए गए बिल की रूपरेखा सामने रखी थी। क्या कहा था सुषमा स्वराज ने और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बता रहे हैं विनीत खरे।
इस बिल पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ट्विटर पर लिखते हैं, ये नया कानून दिखाता है कि ये सबसे सामाजिक रूढ़िवादी सरकार है। पत्रकार और सांसद स्वपनदास गुप्ता ने कहा, सरोगेसी बिल पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है और जो लोग कानूनी तौर पर सरोगेसी नहीं करवा पाएंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। स्वपन कहते हैं, उन्हें उनकी खुशी से वंचित नहीं कीजिए। पत्रकार और लेखक तवलीन सिंह ने ट्वीट किया, इस नए कानून ने इस नैनी स्टेट के अधिकारों को बढ़ा दिया है और औरतों पर इसका फैसला छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वो सरोगेट बनने को तैयार हैं। सरोगेट महिला बनने के लिए उसका विवाहित होना और एक स्वस्थ बच्चे की मां होना जरूरी होगा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष लिखते हैं कि सरोगेसी बिल महिला विरोधी है और इस कानून पर आरएसएस का असर नहीं पड़ना चाहिए। उधर अशोक कुमार बलैया लिखते हैं कि सरकार के इस नए ऐतिहासिक फैसले से देश का मस्तक ऊंचा होगा। ट्विटर पर कृष्णकाली भौमिक ने इस बिल का स्वागत किया और कहा कि कई सेलिब्रिटीज इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन आइडवा की जगमती सांगवान ने कहा,
बहुत लंबे समय से ये जो एरिया था सरोगेसी मदर वाला, ये एक उपेक्षित एरिया था और उसको कानूनी जो सरोकार है उनके नीचे लाने की कोशिश की गई है। ये स्वागत योग्य है एक तरह से, और खासतौर पे क्योंकि गरीब महिलाएं हैं जो अपनी कोख को किराए पर देती है उस तरह से, तो उनका बहुत अलग अलग तरह से शोषण भी हो रहा था और कई बड़ी बड़ी समस्याएं उनके स्वास्थ्य के साथ भी आ रही थी।
कैबिनेट के पास किए गए बिल के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दंपत्ति और समलैंगिक सरोगेसी का रास्ता नहीं अपना पाएंगे। कल सुषमा स्वराज ने कहा था, हम लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक रिश्तों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और इसलिए हम उन्हें इसके लिए हकदार नहीं बनाना चाहते। इस पर समलैंगिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले हरीश अय्यर कहते हैं,
देयर वाज नो रीजन फॉर हर टू ब्रिंग इन लिव इन कपल्स एंड होमोसेक्सुअल कपल्स और इस कदर। और जो उन्होंने ये भी कहा कि जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो जिनके दो बच्चे हो गए हैं और वो तीसरा बच्चा करना चाहते हैं, पेन से नहीं गुजरना चाहते हैं, तो ये सब बिल्कुल इन सब चीजों का जरूरत ही नहीं था। ये एकदम मॉरलिस्टिक व्यू लिया है उन्होंने और ये अगर सच्ची में अगर सरोगेट मदर्स के हित में था तो सिर्फ वो उस दायरे में बात करती, ना कि होमोसेक्सुअल को घसीटती उसमें ना कि वो सेलिब्रिटीज को घसीटती।
कई कार्यकर्ता ये भी डर जता रहे हैं कि अगर सरकार व्यवसायिक सरोगेसी पर रोक लगा देती है तो ये पूरा काम अंडरग्राउंड हो जाएगा और गुपचुप तरीके से इसे किया जाएगा और तब इसे रोकना आसान नहीं होगा। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
इधर राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने कथित तौर पर तिहाड़ जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। जेल अधिकारियों ने बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद को बताया कि विनय शर्मा ने कल रात 9:30 बजे के आसपास अपनी कोठरी की खिड़की से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले जुबैर अहमद से बात की।
मैंने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जब आज बात की तो उनका ये कहना था कि विनय शर्मा ने कल 9:30 बजे रात खुद को एक तौलिए के ज़रिए अपने गले में फंदा फंसाया और आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने उसको देख लिया और उसके बाद उसको वहाँ से हटाया और फिर वो एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले गए, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उसको भर्ती किया गया। लेकिन अधिकारियों का कहना था कि वो खुद चल के एम्बुलेंस में गया था, इसलिए कोई ज़्यादा उसको चोट नहीं आई, कोई घायल नहीं हुआ बुरी तरह से। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा कमज़ोर था और हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए उसको कुछ घंटों के लिए रखा गया था, उसके बाद फिर उसको वापस जेल भेज दिया गया। इससे पहले भी एक किस्सा हुआ था 2013 में, इसका एक जो साथी था राम सिंह, वो अभियुक्त था उस समय, उसका भी शव जो वहाँ पाया गया था और बाद में ये कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली थी। और ये जो विनय शर्मा है, इसका कहना था कि इसके साथ वहाँ पर जेल में पिटाई वगैरह हुई थी। तो जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि किस कारण से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की इसका वो पता लगा रहे हैं, फिलहाल उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या कारण था कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था।
जी जुबैर साहब, साल 2012 में जब ये सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था तो काफ़ी लोगों ने गुस्से का इजहार किया था, लोग सड़कों पर भी निकले थे, लेकिन इस मामले में विनय शर्मा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। इससे पहले जो इस मामले में अभियुक्त थे राम सिंह, उनकी भी मौत हुई थी जेल में ही
2012-16 दिसंबर को, जब इस लड़की का जिसे निर्भय के नाम से हम जानते हैं उसका गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी इतनी हालत ख़राब हुई कि उसकी मौत हो गई और उसके जो साथ में उनके साथी थे उनकी भी पिटाई की, उसके बाद जाहिर है पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी, दिल्ली में भी लोगों ने प्रोसेशन वगैरह निकाले थे। उसके बाद जो फैसला आया इनके ख़िलाफ़, उसमें अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता नाम के जो चार अभियुक्त थे उनको सजाए मौत दी गई। इन्होंने अपील की भी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इनकी जो सज़ा है इससे जो निर्भय के जो माँ बाप हैं उन्होंने कहा कि उनको संतुष्टि मिली है।
साल 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार के दोषी विनय शर्मा ने की आत्महत्या की कोशिश। ये थे जुबैर अहमद। और bbchindi.com पर सबसे पहली खबर में जो देख सकती हूँ उसकी हेडलाइन है, पत्नी का शव उठाकर 12 किलोमीटर चलना पड़ा। ये कहानी है ओडिशा की। ओडिशा के कालाहांडी ज़िले के भवानी पटना में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को कंधे पर रखकर 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जिस अस्पताल में महिला की मौत हुई थी उस अस्पताल ने कथित तौर पर शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस कराने से इनकार कर दिया था। ओडिशा के शहरी विकास मंत्री पशुपेंद्र सिंह देव ने बताया है कि कालाहांडी की कलेक्टर ने इस बात की जांच के आदेश दे दिए हैं कि क्या आदिवासी दाना मांझी को एम्बुलेंस मुहैया कराने से इनकार किया गया था। अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर। और अब आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ वंदना।
पीले पीले पोस्टकार्ड और सफेद A4 साइज के पेपर में ईमेल की प्रिंट आउट, कहाँ से शुरू करेंगे? मुझे लगता है इस बार पोस्टकार्ड से शुरू करना चाहिए, नहीं तो हमारे बहुत सारे श्रोता नाराज होने वाले हैं।
ये है साहब शेख मुस्लिम, इन्होंने नाम लिखा है पचीरा जिला अररिया बिहार से, और ये लिखते हैं कि पिछले कई दिनों से कश्मीर से लेखक निदा नवाज साहब की कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल संबंधित सीरीज सुन रहा हूँ। इसमें कश्मीरियों की पीड़ा साफ झलक रही है। दो देशों की चक्की के बीच बेचारे कश्मीरी पिस रहे हैं।
शेख मुस्लिम साहब, आपने डायरी सुनी, पसंद आई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया
जी। और अगला पोस्टकार्ड है भवेश मरोलिया का, दुर्गा कॉलोनी चुरू राजस्थान से। ये लिखते हैं कि सादर नमस्कार, आप द्वारा प्रस्तुत रियो ओलंपिक पर कार्यक्रम काफी अच्छे लगे।
वंदना, बहुत जल्दबाजी में भवेश मरोलिया साहब ने चिट्ठी लिखी, एकदम घसीट मार के थोड़ा पता पढ़ने में भी हमको मुश्किल हो रही थी। मैं देख रहा था आप थोड़ी हिचक रही थी पढ़ने में, तो मेरी गुजारिश है जब आप चिट्ठी लिखें और तमाम श्रोताओं से, तो साफ साफ हैंड राइटिंग में अपनी बात रखें, अपना नाम और गाँव का या शहर का पूरा पता लिखें।
अगला पोस्ट कार्ड है किशनगंज बिहार, इनका नाम है मुरारी साह।
मुरारी साह
ये लिखते हैं कि मैं बीबीसी का नियमित श्रोता हूँ, 1997 से सुन रहा हूँ, लेकिन जो बात पहले थी वो अब नहीं है।
इनकी शिकायत क्या है?
जी 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 जी
क्योंकि वाकई हम लोग बहुत बदले हैं, पूरा जमाना बदला है, हिंदुस्तान बदला है, दुनिया बदली, जो चीजें पहले थी वैसी ही रहें ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन इनको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया ये जानना जरूरी।
लिखते हैं कि आपके प्रसारण की एक मिसाल हुआ करती थी, अब उसमें गिरावट आ गई है, जैसे मायावती को किसी ने क्या कहा, सोनिया जी को बुखार आ गया वगैरह वगैरह।
अगर मायावती के बारे में कोई अश्लील टिप्पणी करता है और उससे खबर बनती है तो हम उसको ज़रूर अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे, लेकिन हाँ एक बात मैं आपकी ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि जो चीज़ें कई बार गैर ज़रूरी लगती हैं वो भी हमको करनी पड़ती हैं किसी मजबूरी वश, मजबूरी को और कुछ नहीं है, मजबूरी सिर्फ इतनी है कि जब लाखों लोग करोड़ों लोग किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको वो कवर करना ज़रूरी हो जाता है।
ये चिट्ठी आई है आशुतोष कुमार पांडे, नाम तो यही समझ में आ रहा है।
लाइए मुझे दीजिए चिट्ठी, शायद मैं पढ़ पाऊँ। आशुतोष कुमार पांडे, पांडेपुर, जी हाँ बक्सर बिहार ही लिखा हुआ है इन्होंने, और ये हमारे जहाँ तक मुझे याद
जी,
आता
जी,
है हमारे ऑफिस भी आए हैं, हमारे एक श्रोता है,
जी,
बहुत सजग श्रोता है। क्या लिखते,
लिखते
हैं?
रहते हैं, ये कहते हैं कि जादूगर पत्रकार प्रसारक रिहान साहब प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस बार भी जादू कर गए। अमृत लाल नागर को केंद्र में रख कर की गई विवेचना ऐसी लगी जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कूची से आसमान पर चित्र बना दिया हो।
आप भी चित्र ही बना रहे हैं आशुतोष कुमार पांडे जी, आपने भी चित्र ही बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पसंद आया करके।
ये एक और पोस्ट कार्ड है हमारा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, ये जिला अमेठी से हैं।
जिला अमेठी के प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो हमारे पुराने श्रोता इनके गांव का पूरा नाम लीजिए नहीं तो नाराज हो जाएंगे, कैथन पूर्वा अमेठी के रहने
जी,
वाले
बिल्कुल, चलिए माफी चाहती हूँ। तो इन्होंने जो बात की है, निखिल रंजन द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहान में जो ईरान के जासूस प्रोफेसर है उन पर जो विशेष प्रस्तुति थी वो इनको बहुत ही पसंद आई।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो लगातार हमें सुनते रहते हैं हमारे कार्यक्रमों को, और चिट्ठियां भी अब आपने लगातार भेजनी शुरू की हैं, मेरी गुजारिश है कि ये सिलसिला बनाए रखें।
ये शिकायती ईमेल है और बोल रहे हैं कि 9 साल से सुन रहा हूँ, आदित्य त्रिपाठी, उम्र है 22 साल, युवा श्रोता है हमारे, बस्ती उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि क्या बात है, ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जब अमर सिंह जैसे लोग जिन्हें देश के इतिहास भूगोल की कोई समझ नहीं, जो इस देश की आत्मा से परिचित नहीं है, ऐसे लोग आपके रेडियो और वेबसाइट पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं।
ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं आदित्य त्रिपाठी भाई, क्योंकि हर महीने तो अमर सिंह पर कोई खबर या कोई रिपोर्ट या कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जब तक कोई खबर उनके बारे में उनके सिलसिले में नहीं होती हम उनको कहाँ कवरेज देते हैं। और एक वो राज्यसभा सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के मुअज्जिज नेता हैं, तो और दिलचस्प आदमी है, तो हमने उनको 2-3 बार बुलाया है इंटरव्यू के लिए।
जी, अभी जब वापसी की उन्होंने तब जरूर
बुलाया था।
हाँ,
तो ये तो जैसे हम तमाम राजनेताओं को या फिल्मी हस्तियों को और दूसरे लोगों को आमंत्रित करते हैं उसी तरह से अमर सिंह को भी किया।
अगला ईमेल ले लेते हैं हमजा इकबाल का, ये लिखते हैं गोपालगंज बिहार से, और इन्होंने कहा है कि बीबीसी हम तक निष्पक्ष और प्रमाणिक खबरें पहुंचाता है और उम्मीद करता हूं भविष्य में भी इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आपने किसानों पर विशेष श्रृंखला दी उसी तरह से बाढ़ पर भी कोई विशेष प्रस्तुति की जाए।
हमजा इकबाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हम कोशिश करेंगे कि बाढ़ पर भी हम उसी तरह की कुछ श्रृंखला शुरू कर पाएं, लेकिन देश काल और परिस्थितियों पर यह निर्भर रहेगा। फिलहाल समय हमारे पास बहुत कम है, बाकी के ईमेल हम नहीं ले पाएंगे, माफ कीजिएगा। चलते चलते पता बता दूं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो आपको पता मालूम ही है, hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे वंदना और राजेश जोशी, और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राज्य के 95% लोग बातचीत के जरिए शांति बहाली चाहते हैं, सिर्फ 5% लोग पूरी प्रक्रिया में रुकावट डाल रहे हैं। इटली में कल आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 240 के पार पहुंच गई है। प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से ज्यादा राहत और बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस सीरिया के अलेपो शहर में 48 घंटे के संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है, जिससे वहां मानवीय सहायता भेजी जा सके। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।